संतप्त मानस शांत हूं, जिनके गुणों के गान। पेज नंबर 222 है, 250 और 251 कलर्स। इसका थोड़ा सा अर्थ अपने कल किया था। पहला बोल था तत् अतत् संबंधी, और दूसरा बोल है एक और अनेक संबंधी। इस सब में ज्ञान और ज्ञेय संबंधी ही है। अपना ज्ञान एक प्रकार है और उसमें झलकने वाले ज्ञेय अनंत हैं, इसलिए उनके अनेक प्रकार हैं। मुझे एक और अनेक संबंधी बोल हुआ, और इसी को विचित्र भी बोलते हैं। अनेक माने विचित्र, चित्र माने कलर, एक रंग, और एक रंग से अनेक रंग वाला, इसलिए मुझे विचित्र बोलते हैं। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव की अतिशयता के कारण चारों ओर प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से छिन्न भिन्न हो गई है विवेक शक्ति जिसकी। क्या कह रहे हैं देखो, एकाकार जो ज्ञान है उसमें चारों तरफ से बहुत से ज्ञेय झलकते हैं, और उससे इसकी विवेक भेद विज्ञान संबंधी शक्ति जो है वो कुंठित हो गई है। तो कैसे कुंठित हो गई है? जैसे अपन ने मैंने कल परसों उदाहरण दिया था ना कि वो ऐसी फिल्म दिखाते हैं कि जिस फिल्म में अपन भी शामिल हो जाते हैं, और वो समुद्र में जाती है, कहां जाती है, एकदम नाव में बैठा दिखाते हैं, तो जिस नाव में भी लोग बैठे होते हैं उस नाव में जैसे हम भी बैठे हैं हमें लगता है, जबकि हम होते नहीं उसमें। और फिर एकदम गहरे में समुद्र में यहां वहां बहुत तेजी से जाती है, जैसे घबरा जाता है ना आदमी। उसी वक्त जो अनंत ज्ञेय इस ज्ञान में झलकते हैं, तो ये अनेक आकार हो गए, एक तरह से घबरा जाता है कि मेरा क्या रूप है वो उसकी समझ में ही नहीं आता है। ऐसे अपन बहुत पदार्थों के बारे में कहा जाता है ना, सुबह जाओ तो बिल्कुल अलग छटा दिखती है, दोपहर को जाओ तो बिल्कुल अलग दिखती है, शाम को जाओ तो बिल्कुल अलग दिखती है, ऐसा बोलते ना। वह भगवान के लिए हमारे लिए अच्छा हो जाता है। अब सुबह सीधा एकदम सूर्य सामने से आएगा तो उसका जो प्रभाव होगा वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा ही, दोपहर में ऊपर चला जाएगा उसका अलग दिखेगा, और फिर पश्चिम में जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो कोई बहुत ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उसमें उत्सुई कैसे मूर्ति रंग बदलती है, ऐसा हो जाता है उसको, ऐसा होता है, जैसे स्फटिक मणि है उसमें जैसी डांग लगा दो उसका वैसा रंग हो जाता है, तो उसमें उस मूर्ति में अच्छा दिखने लगता है, मूर्ति में उसे अच्छे दिखने लगता है। अभी स्फटिक की मूर्ति हो और नीचे से उसको ऐसी प्रकाश की व्यवस्था की जाए कि वो अलग अलग कलर के लट्टू जलें, तो वो बिल्कुल अलग अलग कलर की मूर्ति दिखती है। तो भगवान तो दिन में तीन रूप बदलते हैं। ऐसा है कि कोई भी मूर्ति हो ना सही स्फटिक की, संगमरमर की है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकाश डालोगे तो वो अलग अलग थोड़ी दिखाई देगी ही। जितनी स्पष्ट रूप से पृथक स्फटिक की मूर्ति देती है उतनी ना दे, लेकिन दिखाई तो दे, फर्क तो पड़ता ही है ना। तो अनेक ज्ञेयों के आकार ज्ञान में झलकने से वो एकदम विचित्र से भ्रमित हो गई है बुद्धि जिसकी। बाह्य पदार्थों के ग्रहण करने माने जानने। अब कहते हैं कि ग्रहण करने का जानने कैसे हो सकता है, ग्रहण करने का तो ग्रहण करना होता है। लेकिन भाई ज्ञान आत्मा का ग्रहण करना जानना ही है, उसका स्वभाव ही जानना है, और जानने के अतिरिक्त वो कुछ करता ही नहीं है। ज्ञान तो एक शक्ति है आत्मा में, सर्वज्ञत्व तो शक्ति है, और शक्तियां हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं, और पर के ग्रहण त्याग से शून्यत्व शक्ति है। अब फिर भी लिखा हो कि आत्मा ने ग्रहण किया, तो उसका अर्थ चाहे जितना कुछ भी लिखा हो, तुमने पकड़ लिया, जकड़ लिया, कुछ भी लिखा हो, तो उसका अर्थ एकमात्र जानना है। प्रवचन सार में एक गाथा आती है, और उसकी टीका में अमृतचंदाचार्य ने नीचे लिखा है कि उसमें सारे लोक के गे जैसे कीलित हो गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, और बहुत बहुत शब्द डले हुए हैं, प्रविष्ट हो गए हों, हाँ, तो कितनी कुछ भी लिखा हो, सिर्फ उसका अर्थ है कि उसके ज्ञान जानने में आ रहे हैं। वो तो सिर्फ वहां जो अनेक शब्दावली का प्रयोग किया है वो ये बताने के लिए किया है कि उनका बदलना संभव नहीं है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में अपने क्रमबद्ध वाली पर्याय की किताब में भी उसे कोट किया, क्योंकि वहां ये सिद्ध करना उद्देश्य है कि तुम इसमें फेरफार की बुद्धि मत रखो, क्योंकि हम इसमें कोई गड़बड़ कर लेंगे कि बदल देंगे, यानी वो कुछ नहीं हो सकते हैं। अनंत काल तक के गे जैसे उसमें उत्कीर्ण हो गए हों, अब ये उत्कीर्ण माने ये टांकी से पत्थर पर लिखते हैं ना शिलालेख, उसे उत्कीर्ण होना बोलते हैं। तो जो अपन जल की रेखा जैसे जल में ऐसा लिखे तो तत्काल मिटता चला जाता है, और वे अधिक स्थायी जो लेखन है वो उत्कीर्ण होना, और जिस संगमरमर के पाटियों पर फिर उसमें गड्ढे करके लिखाए, फिर उसमें वो क्या है लोहा तामा क्या भरते हैं शीशा भर दिया, मैंने कहने का मतलब है कि बहुत ही स्थायी रूप से वे पदार्थ उसमें आ गए, इससे किंच मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थ सबका इतना ही है कि वे उसके जान लिए गए हैं। हमने किसी से कर्जा लिया और कर्जा की एक समय की म्याद है, और वो म्याद हमने नक्की हो गई, और हमारे मन में अत्यंत पवित्र भाव है कि हमको इस समय पर कर्जा चुकाना है, और हमारे पास उस चुकाने का साधन भी मौजूद है, तो हमको उसमें घबराने की क्या जरूरत है कि साहब उसने लिखा पढ़ी कराई, उसने ताम्र पत्र पे लिखा लिया, उसने संगमरमर के पाटियों पे लिखा दिया, वो किसने गवर्नमेंट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने कितनी कितनी जगत में बेईमानियां होती ना, तो उसकी वजह से उतने उतने रास्ते निकाल लिए कि साहब वो अपराधी ने पुलिस में बयान दिया कि नहीं साहब मजिस्ट्रेट के सामने दो, मजिस्ट्रेट के सामने दिलाओ बयान, और मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको मालूम है उस आदमी को हथकड़ी डाल कर है बेड़ी पैर में डाले रहो, और फिर कहो तुम बयान दे तो उसको वो नहीं माना जाता, उसे बिल्कुल वो करना पड़ेगा। फिर दो पुलिस वाले ऐसे पकड़े रहे हैं और कहेंगे तुम बयान दे, नहीं मानेंगे, तुमको बाहर जितनी व्यवस्था करनी हो 1,00,000 पुलिस लगा दो न्यायालय की बाउंड्री के बाहर, तुम्हें डर है ना भाग जाएगा, लेकिन उसको वहां एकदम किसी के दबाव के बिना वो बयान दे सके ऐसी व्यवस्था की जाती है कि नहीं? और फिर भी उसने ये कहा था मैंने अपने होशो हवास में बहुत सोच समझ कर ये बयान दे रहा हूं कि लिख रहा हूं है? और जो प्रमाण रहे और समय पे काम आवे, सनद रहे और तबे काम आवे, इतनी इतनी चीजें सब क्यों हो गई? उसी बेईमानी में से हो गई ना। लेकिन अब जिसके हृदय में पूरी ईमानदारी है اور یہ تو اس کو کتنا ہی کڑک قانون بناتے جائیں اسے کیا تکلیف ہونے والی ہے, اسے کیا گھبراہٹ ہونے والی ہے. تو ایسے ہی وگیان کی بات بتا رہے ہیں کہ بائی پدارتھوں کو گرہن کرنے کے سواب سے اتیشتا کے کارن, وہ کل شاید پھر بولا تھا اتیشا, کوئی اتیشے متشے نہیں ہے, یہ تو جاننا ایک سہج سواب ہے, اس کی بات ہے. پرگٹ ہونے والے انیک پرکار کے گیاکاروں سے چھن بھن ہو گئی ہے وویک شکتی جس کی. اب یہاں چھن بھن کچھ نہیں ہوا ہے, مطلب وویک کہتے سمجھنے کی شکتی, اس کے آتنک سے سمجھنے کی شکتی اتنی کنٹھت ہو گئی ہے کہ وہ ہے اجانی پشو پورنتہ کھنڈ کھنڈ ہوتا ہوا نشٹ ہو جاتا ہے. کھنڈ کھنڈ ہو جاتا, کھنڈ کھنڈ ٹکڑے ہوتے نہیں ہیں. وہ اس کے گیان میں ایسا لگتا ہے کہ میں کتنے کتنے پرکار کا ہو گیا, کیسے کھنڈ کھنڈ ہو گیا. جتنوں کو جانتا ہے اتنوں کو الگ الگ ہی تو جانے گا نا, کیونکہ وہ پدارتھ الگ الگ ہیں. تو بے سمجھتا میرے گیان میں اتنے ٹکڑے ہو گئے, جبکہ وہ ٹکڑے تو گئے کے ہیں, گیان میں تو صرف جاننے میں آئے ہیں. تو انیکانت کو جاننے والے گیانی سدا ادت ایک دربیتو کے کارن بھید کے بھرم کو نشٹ کرتے ہوئے جس کا انوبھو نرواد ہے, ایسے گیان کو دیکھتے ہیں انوبھو کرتے ہیں. کہتے گیانی جن انت گے جس گیان میں جھلک رہے ہیں, اس گیان کو اس سمے بھی بالکل ایکاکار ہی دیکھتے ہیں. گے جھلک رہے تو اس وقت وہ انیکاکار ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اور پھر دوسرا چھند کیا ہے کہ گیاکار روپ کلنک سے سویم کو ملن مان کر اس کو دھو ڈالنے کی کلپنا کرتا ہوا. اس پنکتی پہ بنے کلر کیا تھا نا, وہ کیا کہتا ہے, ہم نے گیوں کو جانا تو آتما کلنکت ہو گیا, اسے جاننے میں ہی پاپ لگتا ہے. اب آپ یہ کہو گے کیسی بات کرتے ہو, ایسے ہندوستان میں تو ہمیں ایسے لوگ نہیں دکھتے ہیں, جینیوں میں تو نہیں دکھتے ہیں کیسے کہ جاننے ماتر سے اپنے کو کلنک ماننے لگ جائے. ابھی میں یہیں یہ بتا دوں کہ ایسے لوگ ہیں اس جگت میں اور نہیں ہم, کہ درباگ سے کوئی ماں بہن کوئی کمرے میں ہے, بستر بدل رہی ہے, اور اچانک ہم چلے جائیں اور اس کو ہم ننگنا اوستھا میں دیکھ لیں تو ایک دم وہاں سے بھاگتے ہیں, لوٹ کے باہر ہو جاتے ہیں, اور اندر میں ایک دم اپرادھ بودھ سے گرست ہوتے ہیں کہ نہیں. وہاں بھی ہوا کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ. بس جان نہیں تو ہوا ہے نا, اور ایسا نہیں کوئی ادبھت جاننا ہوا ہو, کیونکہ لگ بھگ ہم سبھی لگ بھگ ایک سے ہی تو ہیں. ہم نے سویم کو دیکھا جانا تو سارے پرسوں کو دیکھنا جاننا ہو گیا, اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھا جانا تو ساری مہلاؤں کو دیکھنا جاننا ہو گیا. اس میں کون سا ایسا ہے آپ نے ایک دم بہت بڑا ہو گیا پر آپ کی بدھی میں رنج ماتر بھی وہ نہیں تھی بھاونا کہ ہم کو کوئی کیسا دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی درد کیا تھا, وہ اچانک بس ہو گیا. تو اپرادھ تو بالکل بھی نہیں ہوا, یہاں تک کہ وہ بہن بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں کرتی ہے, بلکہ آپ یعنی بار بار اس سے معافی مانگیں تو وہ کہے کہ آپ کی کیا غلطی ہے, غلطی تو میری ہی ہے, مجھے اندر سے اسے لاک کرنا تھا. وہ بھی یہی کہے گی, آپ کو اپرادھی نہیں مانتی ہے. لیکن ایسا کون ہے یہاں بھی کہ اسی ٹائپ کی کوئی گھٹنا ہو جائے تو وہ اپنے کو اپرادھی نہیں مانتا ہے, تو وہی گیاکار کا کلنک ہو گیا نا. من میں اس کے بعد اس کے الگ کوئی اپرادھ ہو تو وہ اپرادھی ہو, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو ہے ہی نہیں. جی آج پڑھا نا, گیاکار روپ کلنک سے फिर वो ज्ञान गेहों के आकार ज्ञान में झलके वो उनको ही कलंक मान रहा है, स्वयं को मलिन मानकर उसको धो डालने की कल्पना करता हुआ अज्ञानी प्रगट रूप से अनेकाकार ज्ञान को एकाकार करने की इच्छा से अनेकाकार न मानकर नष्ट होता है। जो उसने उस ज्ञान को अनेक गेहों को जानने वाला न स्वीकार करके तो वो एकांती हो गया, उसका नाम है नष्ट होना। परंतु अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानते हुए विचित्र होने पर भी, वो विचित्र का अर्थ लिखा ना अनेक रूप, और अविचित्र माने एक एक रूप, एकता को प्राप्त ज्ञान को स्वयं से ही छालित हुआ अनुभव करते हैं, है ना, स्वयं छालित, वो तो अपने से ही पवित्र है। वो तो कहता है ज्ञान तो धुला ही धुलाया है, अरे ज्ञान को क्या धोना, उसको धोने की रंज मात्र आवश्यकता है ही नहीं। जो अत्यंत पवित्र है उसे रंज मात्र धोने की आवश्यकता नहीं है, और जो स्वभाव से ही अपवित्र है उसको धोने से क्या हुआ। हमें नहीं कहते मुनिराज हमारे स्नान का त्याग क्यों कर देते हैं, कि ये शरीर महा अपवित्र है, मलमूत्र की खान है, मैल ही मैल से बना हुआ है, अब इसको धोने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट शुद्ध कहे, उस घड़े को कितने घड़े पानी से नहाओ जिसके अंदर मैल भरा हुआ है तो उस घड़े को पवित्र माना जा सकता है, ये संभव नहीं है ना। ऐसे ही एकाकार अनेकाकार, देखो इसमें तीन शब्द हैं, सबसे नीचे की तीन पंक्तियां पढ़ो। इस प्रकार ज्ञान एक भी है अनेक भी है, एकाकार भी है अनेकाकार भी है, ज्ञानाकार भी है ज्ञेयाकार भी है, यही एकानेक संबंधी अनेकांत है। माने तीन शब्दों से प्रयोग करते हैं इसको, एक एक अनेक वाला बोल भी कहते हैं, एकाकार अनेकाकार वाला बोल भी कहते हैं, और ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार वाला बोल भी कहते हैं। मैं समझता हूं बहुत स्पष्ट हो गया, यदि अपन को और स्पष्ट करना है तो जयचंद छाबड़ा का कोटेशन अपन ने दिया है उसे भी पढ़ लेते हैं। देखो ज्ञान है वह गेहों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है, इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञानमय ऐसे निज का नाश करता है, और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है, उस वक्त भी उसको एक ही देखता है। एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोकर उससे ज्ञेयाकारों को दूर करके ज्ञान को ज्ञेयाकारों से रहित एकाकार रूप करने को चाहता हुआ ज्ञान का नाश करता है, तो अनेकांतवादी तो सत्यार्थ वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप ही अनेकाकार पना मानता है। माने वो दोनों एकाकार अनेकाकार, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, और एक और अनेक, इन दोनों के एक तीनों के एक ही अर्थ हैं, और वो ये दोनों स्वभाव हैं ज्ञान की, ये ज्ञान में कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये जानना, ये साधवाद को जानना है। अब ये छंद पढ़ो तो बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारी समझ में भी आएगा।
खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु, छिन्न भिन्न हो चौर से बायार्थ के परिग्रहण से, एकत्व के परिज्ञान से ब्रह्म भेद जो परित्याग दे, पेशादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करें, जो मिले गे आकार का दो डालने के भाव से स्वीकृत करें कत को एकांत से वे नष्ट हो अनेकत को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं बेशादवादी स्वता चाले तत्व का अनुभव करें।
सबसे बड़ी भूल ये है इसमें कि एकाकार होना और अनेकाकार होना ये दोनों वस्तु के स्वभाव हैं और प्रति समय प्रत्येक वस्तु एकाकार भी है और अनेकाकार भी है। आत्मा के संदर्भ में बात करें तो उसका ज्ञान रूप जो आकार है वही उसका एकाकार है और ज्ञान में झलकने वाले जो गेय हैं अनेक अनेक आकार के उनकी झलक जो ज्ञान की पर्याय में आई यद्यपि वो ज्ञान का ही अंश है वो गेयों का उसमें कुछ भी नहीं आया लेकिन उसको इसमें गेय आ गए उनका प्रवेश हो गया ऐसा मान के उसे अशुद्ध मान लेता है और किसी तरह इनको निकाल के अलग करो जो कि कभी संभव नहीं है। एक ऐसा एकांत करता है और दूसरा कहता है अपन कहते हैं ना अभी तुम उपेक्षा करोगे आए ही नहीं तो भी आ रहे तो भी कहता नहीं नहीं मैंने जाना ही नहीं वो तो ज्ञान तुम्हें आया ही नहीं ये साफ दिख रहे ना वो आत्मा जानता ही नहीं पर वो समझे ना पर जानने में स्पष्ट आ रहे हैं। पंडित हिम्मत भाई जो है अपने सोनगढ़ में बालीवुड ये कहते थे कि यदि तुझे जानने में नहीं आ रहे तो ये दीवार तेरे जानने में आ रही कि नहीं आ रही कि नहीं है ही नहीं जानने मैं तो नहीं आ रही तो सीधा चले जाना ऐसा मुड़ के ऐसा क्यों जाता है यानी यहां कुछ है ही नहीं है? तो ऐसा बोलते थे ऐसा कैसे है यानी कहने का मतलब ये है कि वो भी चाहता है कि अनेकाकार को मैं मिटा दूं लेकिन अनेकाकार को मिटाने का कोई तरीका है ही नहीं वो तो स्वयं मिट जाना तरीका है, है? तो वो बस जैसे खरगोश की आदत होती है ना कि पीछे से शिकारी उसका शिकार करे तो बहुत तेज दौड़ता है और जब वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है उसे चलते नहीं बनता है तो एक जगह बैठ जाता है झाड़ी में और अपने आंखों पर अपने कान ऐसे रख लेता है अब फिर उसे कुछ नहीं दिखता है तो वो समझता है मैं किसी को नहीं दिख रहा मैंने शिकारी उसके पीछे दौड़ता आ रहा है अब वो उसे पकड़ दे लेकिन दिखता खुद देखना बंद करता है और मानता क्या है कि अब सामने वाला मेरे को नहीं देख रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा तो उसको मैं कैसे दिख रहा हूंगा अब वो आगे मार देता है शिकारी वह तो ऐसे ही स्पष्ट बाही पदार्थ अपने में झलक रहे हैं नहीं आ रहा अपने कहते हैं ना कि झूठा बड़ा के दोंदा ऐसा बोलते ना बुंदेलखंड की एक कहावत है समझते हो ना कि दोंदा और झूठे में क्या फर्क होता है झूठ बोले समझे ना आपकी में तो एक दो आदमियों में विवाद हो गया कि ये दो कितने होते हैं एक कहता था 4 और दूसरा कहता था 5 और बहुत विवाद हुआ मामला निपटे नहीं तो उनने शर्त लगा ली। शर्त क्या लगा ली कि यदि दो मेरी बात सही निकली तो तू अपनी पत्नी को मुझे दे देगा और यदि तेरी सही निकली तो मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। तो उसने देखा उसकी पत्नी ने देखा कि क्या कर रहा है सफेद झूठ बोल रहा है 2 2 5 बोल रहा है और दांव पे मुझे लगा रहा। तो उसने बोली क्या कर रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो फिर ऐसा दाव पे लगा रहे अरे भाई तुम हार जाओगे कैसे आ जाऊंगा? अरे तुम्हारी बात गलत है तो हारोगे नहीं तो क्या होगा, तो मैं चली जाऊंगा तुम्हारे हाथ से फिर कैसे जाएंगे? तब वो कहता है कि सिद्ध हो सिद्ध, हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा। मैं मानूंगा ही नहीं, मैं दो दो पांच ही मानूंगा। इसलिए बोलते दो ना सत्य से मुझे क्या लेना देना है, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो मानूंगा ना तब हारूंगा। तो ऐसे ही वे लोग हम देखे, अपने को लगता है ऐसे ऐसे मूर्ख लोग दुनिया में होते होंगे, लेकिन होते हैं ऐसे, हमने देखे हैं बहुत बहुत बड़े पदवीधारी बड़े बड़े वे। तो स्पष्ट जो बात है जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विरोध, तो प्रत्यक्ष विरोध वाली बात कहते रहते हैं और अपनी बात बैठते रहते हैं। और ऐसे लोगों को भी कुछ ना कुछ मूर्ख मिलते हैं, उनके आगे पीछे डोलने वाले, उनका झंडा लेकर बोलने वाले, उसके पीछे लाखों रुपया खर्च करने वाले, ऐसे लोग भी मिलते हैं। बदलो पेज 224 है। उक्त अनेकांत से अपरिचित एकांतवादी या तो ज्ञान को एक ही मानते हैं या फिर अनेक ही मानते हैं, एकाकार ही मानते हैं या फिर अनेकाकार ही मानते हैं, ज्ञानाकार ही मानते हैं या फिर ज्ञेयाकार ही मानते हैं। अरे तीनों जो बोल हैं एक ही तरह के हैं। ज्ञान को एक ही मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है। अब एक तो ऐसा कहते हैं वो कि अनेक ज्ञेयों को वो जानता ही नहीं, फिर वो ये कहते हैं कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा। तो इसमें सिद्ध तो हो गया कि जानता है, ये सिद्ध हो गया ना कि वो जब मलिन हो जाएगा तो जानेगा तभी तो मलिन होगा। अब दोनों बातें एक साथ कहते हैं। देखो मलिन हो जाता इस कारण ज्ञेयाकार ज्ञान अशुद्धि का जनक है, अतः ज्ञान को एक ज्ञानाकार मानना ही ठीक है। पर उसे इस बात का पता नहीं है कि अनेक ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है। ये कोई विकार नहीं है, एक क्रम के उदय से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं अभी गर्म का क्षयोपशम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, समझे ना, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं मुझे आंख से जैसे है ना कि एक के दो दो दिखने लगते चंद्रमा, ऐसा आंख में ऐसे डिफेक्ट हो जाता है। एक मरीज गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरे को एक बीमारी हो गई है, क्या एक के दो दिखते हैं? तो डॉक्टर बोला कि तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? क्या उस डॉक्टर को एक के चार दिखते थे। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि अनेक ज्ञेयों को ज्ञान जानता है, कल्पना नहीं है ये, तो ये जानना प्रभाव नहीं है, गलती नहीं है, उसका स्वभाव है। ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है, विभाव नहीं। इस कारण अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान का मलिन होना संभव ही नहीं है। ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः अनेक ही है, अनेकाकार ही है। इसी प्रकार ज्ञों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का वह कार्य भी क्या है, अतः वह ज्ञाकार ही है। देखो अभी लेटेस्ट में एक ऐसी बीमारी हुई है कि जिसको जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं आजकल कि देखो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन अपने उंगलियों में होता है, कि ये उंगलियां हर चीज को इस किताब को छुएंगी फिर इसे उठाएंगी इसे उठाएंगी, तो सब जगह धूल मिट्टी लगी है और सब जगह नीचे धुली हुई चीजें तो है नहीं, अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में है, तो इसलिए ये हाथ सबसे ज्यादा इन्फेक्शन से रहते हैं। اب آپ نے ان سے آنکھ ملی تو آنکھ میں ہو جاتا ہے، جہاں آپ اس سے لگاتے ہیں وہاں وہ تکلیف ہو جاتی ہے. اس لیے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے. لاہب بولتے ہیں اب بہت بن کر کر کے وہ لوگ بتاتے ہیں نا کہ کس طرح سے ڈھنگ سے نہیں دھو تو ہاتھ میں گندے رہ جاتے ہیں. اب یہ تو اب ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی بیماری آئی ہے کہ آدمی کو 24 گھنٹہ ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہو گئے، تو پھر جا کے ہاتھ دھوتا ہے، پھر جا کے ہاتھ دھوتا ہے، پھر جا کے ہاتھ دھوتا ہے. یہ بہت پریشانی ہو ایسا آج کل ایک کو نہیں سینکڑوں کو. امریکہ میں جا کر کے کیا کہ بس 2-2 منٹ پہ جا کر کے وہ ہاتھ دھوتا ہے. اب ہمیں بھی اچھا ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اب بھی ہاتھ دھوئے تھے اور اس نے کچھ کسی کو چھوا نہیں، کچھ نہیں کیا، پھر 5 منٹ میں جا کے دھوتا ہے، پھر دھوتا ہے، پھر جا کے نہاتا ہے، پھر نہاتا ہے، اس دن میں 6-6 دفعہ نہاتا ہے. یہ کبھی کبھی یہ ماتائیں بہنیں زیادہ دھرم کے نام پہ نہاتی ہوتی ہیں، تو وہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو وہ بیماری ہو گئی، اس بیماری کی گولیاں ہوتی ہیں، وہ بیماری کی گولیاں دیتے ہیں وہ کھانے کے لیے. کہ جس چیز سے گندگی ہوئی نہیں، اپنے بھرم اتنا اندر سے وہ گندگی کے آتنک سے اتنا آتنکت ہو گیا ہے کہ وہ بار بار ہاتھ دھوتا ہے. تو ایسے ہی گیہوں کو جاننے سے یہ اتنا آتنکت ہو گیا ہے اس کے ابھیاس سے کہ جانیں گے تو ایسا ہو جائے گا، جانیں گے تو ایسا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں گیا کار کے کلنگ کو دھو ڈالنے کی بھاونا سے، پر وہ جاننے ہی نہیں، جانے آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو. ارے ایسی بار بار آنکھیں بند کرے گا تو پھر سڑک کیسے دکھے گی؟ آنکھیں بند کرنے کے پہلے پیر بند کرنا پڑیں گے. کہ نہیں نہیں مجھے گندی چیز نہیں دیکھنی. ارے بھائی جب تم دیکھے گا تب تو نرنے کرے گا کہ یہ گندی ہے کہ گندی نہیں ہے. ارے نرنے گندی چیز نہیں دیکھنی ہے تو بنا دیکھے کیسے نرنے ہوگا کہ یہ گندی چیز ہے نا؟ دیکھو دھیان کو انیک ماننے والے ایکانت وادیوں کا کہنا یہ ہے کہ انیک گیہوں کو جانتا ہوا دھیان انیک ہی دکھائی دیتا ہے. اتا ہوا انیک ہی ہے، انیک کا ایک بنا ہے ہی نہیں اس میں. اسی پرکار گیہوں کو جاننے کے اترکت دھیان کا اور کار بھی کیا ہے؟ بس وہ گیا کار ہی ہے، بس گیہوں کو جانتا رہا جانتا رہا جانتا رہا، اور کچھ ہے ہی نہیں. وہ سمجھتا بس یہی کام ہے، یہی کام ہے، یہی کام ہے. سیادبادی کہتے ہیں کہ گیان دربھ سوبھاو سے ایکاکار ہے، گیاناکار ہے اس لیے ایک بھی ہے، اور پریائے سوبھاو سے انیکاکار ہے، گیاکار ہے اس لیے انیک بھی ہے. اس طرح وستو کا سروپ ہے. ایک گرودیو کا کوٹیشن ہے، پڑھنا بہت اچھا ہوگا، اپنا بار بار اور زیادہ پڑھیں گے نا تو پھر ریپیٹیشن ہوگا بار بار. نکالو پیج نمبر 227، بناسی راج جی کے کلش ہیں اس کے، پڑھو.
کو پسو گیان کی انت وچتائی دیکھے گے کے آکار نانا روپ وچ تریو ہے، تاہی کو بیچاری کہیں گیان کی انیک ستا، کہیں کے کنت پچھے لوکانی سولا رو ہے. تاکو برہم بن جیو کو گیان بنتے کہیں گیان، آگا میں آگا دے نیرا وادے رس بھریو ہے. گایا کے سو بھائی پر جائے سو انیک بھائی، جد پی تتا پی ایک تا سونا ہی ٹرو ہے. کو خود کے ہیں گیان ماہی گے کو آکا، پتی بانسی رہو ہے کلنک تا ہی دھوئیے. جب دھیان جل سو پھکاری کے دھول کی، تب نیراکار سد گیان میں ہوئیے. تا سو سیاد بادی کہے گیان کو سوبھاو ہے، گے کو آکار وستو ماہی کہاں کھوئیے. جیسے نانا روپ پرتیب میں کی جھلک دی، जद पिता तपिया रसी बेमल जोइए।
आया होगा समझ में, क्योंकि विषय स्पष्ट हो गया है तो छंद का अर्थ भी स्पष्ट है। उसी उदाहरण को आरसी माने दर्पण होता है, दर्पणी का उदाहरण दिया और उसी बात को उन्होंने सिद्ध किया। अब वो इसी को मलिनपना कहते हैं। दिक्कत तो ये है जो गेयों को जानने को मलिनपना कहते हैं, और ये कलश्टिका में इसका प्रयोग है, बनारसी दास जी ने इसका प्रयोग किया, तो उसको मलिन कहेंगे तो मलिन की सफाई करना जरूरी है, तो वे उसको स्वभाव कैसे मानेंगे जबकि वो स्वभाव था। देखो कोई पशु ज्ञान की अनंत विचित्रता ही देखे, ज्ञान में अनेक प्रकार की विचित्रता देखने में आती है। देखो क्या लिखा, ज्ञान की विचित्रता ही। वास्तव में तो ज्ञान की विचित्रता कहाँ है, वो तो ज्ञेयों की विचित्रता है। विचित्र माने अनेकाकारपन है, अनेक जैसे एक बहुरूपिया है। अब वो रोजाना एक बेस बना करके आता है, तो कभी सेठ पगड़ी मगड़ी बांध के आ जाता है, कभी पुलिस वाला बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है, ऐसे जो अलग अलग देशें होती हैं वो उनको धारण कर करके आता है। फिर एक दिन वो ऐसा 15 दिन तक ऐसा करता है, फिर एक दिन वो अपने असली वेश में आता है, जो मतलब जिसमें वो घर हमेशा वारामासी रहता है ना, उस वेश में आता है, और फिर वो सब दुकानदारों से पैसा उगाता है। मैंने जो 15 दिन तक तुमको कला दिखाई अनेक भेष धारण करके, अब उसकी वो मेहनताना मांगने आता है। तो जो बच्चे हैं साधारण, वो देख देख के, अरे ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये तो ऐसा था, बस वो उन विभिन्न रूपों में देखते हैं ना, तो उसके असली रूप को वे भूल ही जाते हैं कि ये भी हम तुम जैसा ही एक आदमी है, और ये भी कोई पुराने जमाने की पगड़ी पहनता रहता हूं, ये तो नाटक में ही पहनता है कि पुराने जमाने के सारे कपड़े मपड़े पहनता हूं, ताम झाम जैसा कुछ नहीं है, वो इस बात को भूल ही जाता है। ऐसे ही ज्ञान में अनेक गेयों के जो आकार झलके, तो वो धीरे धीरे उन्हें गेयों के आकार मान लेता है। देखो लिखा को पशु ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे, गे के आकार नाना रूप विस्तर है, वो तो गे के आकार में नाना रूप से विस्तार पाया है। ताही को विचार कहे ज्ञान की अनेक सत्ता, ज्ञान की सत्ता अनेक रूप है। गही के एकांत पक्ष लोकनि सो लड़े हो, और उसका एकांत पक्ष उसने ग्रहण किया है और लोगों से लड़ने लग गया कि ज्ञान तो अनेक आकार ही होता है, एक आकार होता ही नहीं। ताको भ्रम भंजीवे खो ज्ञानवंत कहे ज्ञान, ज्ञानवानी जीव उसके भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं कि अगम अगाध निराबाध रस से भरा हुआ है। ज्ञान तो अगम, अगम माने दूसरों के द्वारा जाना नहीं जाए, अगम में है, अगम में अगाध जिसकी गहराई अपार है, और कोई भी बाधा से रहित और अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस से भरा हुआ ऐसा भगवान आत्मा है। ज्ञायक स्वभाव परिजायसों अनेक भयो, यही ज्ञायक स्वभाव जब उसको पर्याय दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखो माने कोई वो बेकार नहीं हो गया, चीज तो वोई की वोई है, देखने की दृष्टि बदली है। जब वो तुमने एकाकार देखा था तब भी वो पर्याय स्वभाव उसमें था, और जब तुमने पर्याय स्वभाव से देखा था तब भी वो एकाकार था। दोनों समय में एकाकार, तुमने एकाकार देखा तब भी वो अनेकाकार था, तुमने अनेकाकार देखा तब भी वो एकाकार था। यद्यपि तथापि एक तासो नाही तरयो है, यद्यपि अनेक रूप हुआ दिखाई देता है पर वो अपने एक पने से विचलित नहीं हुआ है। वो नट जो रोजाना इतने स्वांग रख के आया था, लेकिन वो ये बात एक सेकंड को भी नहीं भूला कि मैं नट हूं, और ये अनेक भेष में धारण करता हूं। कोई कुधी कहे माने कहेगा, समझे? इस 400 वर्ष पुरानी भाषा कह है, कुंजे समझे, तू ऐसा कह है, वो ऐसा कह है, बोलते कि नहीं बोलते, अभी भी बोलते हैं। कोई कुधी कहे ज्ञान माही गेह को अकार प्रतिभास रहो है कलंक ताई धोइये। ज्ञान में गेह के आकार प्रतिभाषित हो रहे हैं, वो है कलंक, और उस कलंक को धो। अब दर्पण बिल्कुल निर्मल है, अब उसमें सामने के आकार झलक रहे, अब दर्पण को धोए। सामने मेले का ढेर है तो वो झलकेगा, वो तो तू ज्यो ज्यो धोएगा त्यों त्यों और साफ होता जाएगा। उसने उसको कलंक मान लिया, जो बिल्कुल वस्तु का स्वभाव था उसे कलंक मान लिया। जब ध्यान जलसों पखारे के धवल कीजे, जब ज्ञान रूपी जल से उसको प्रक्षालित करके और एकदम सफेद धवल निर्मल कर देते हैं, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए, तब वो शुद्ध निराकार ज्ञानमय हो जाता है। ऐसा कोई अज्ञानी कहता है कि वो मलिन हो गया था, उसे ज्ञान मल से धो उसको, तो उसे स्यादवादी कहते हैं कि भैया वो तो ज्ञान का स्वभाव है, वो मलिनता नहीं है। गे को आकार वस्तु माही कहां खोइए, गे के आकार को वस्तु में से कैसे खोदें, कैसे हटा दें? ऐसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिखे, जदपि तथापि आरसी विमल जोइए, तो भी जो दर्पण है वो निर्मल का निर्मल है। अपन देखते हैं ना, जब बाजार में अपन देखते हैं कि इस कपड़े को और धो दो, तो धो देते हैं, फिर साफ नहीं हुआ, तो फिर आकर भैया उसका रंग ही ऐसा है। अपन कहते हैं ना कि वो मूल वो चीजें ही ऐसी है, अब वैसे कैसे साफ हो जाएगी? तुम समझा के साथ सफेद झक हो गए ना, दूसरा कुर्ता कैसे ये हो जाए, लेकिन वो रंगीन कपड़े का ही बना है तो वो साफ कैसे हो जाएगा? हो गया ना। पेज नंबर 230, ये कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं इसमें, इसी ज्ञान गए संबंधी, एकानेक संबंधी। हमने तो ऐसा सुना था, मिल गया, कि ज्ञान माने आत्म वस्तु द्रव्य की अपेक्षा एक है, और गुणों की अपेक्षा या पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। पर यहां यह कहा जा रहा है कि ज्ञाकार होने से ज्ञान अनेक है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? जब अपन एकानेक की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि द्रव्य की तरफ से देखो तो वो अखंड है, एक है, तो गुणों की तरफ से देखो तो अनंत गुण है, तो वो अनेक हो गया। पर्यायों की तरफ से देखो तो अनेक पर्याय है, एकानेक का हमारा काम हो गया। एकानेक संबंधी विकल्प पूरा हो गया ना, कि द्रव्य की तरफ से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो तो हम ऐसे घटित करते हैं वस्तु में, एक और अनेक पना हम कैसे घटित करते हैं, कि गुण अनंत है इसलिए वो उसका अनेक पना है, आत्मा एक है इसलिए उसका एक पना है। अब वो कह रहे कि यहां ये कह रहे नहीं, यहां तो ये कह रहे कि वो ज्ञान माने ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान माने आत्मा। तो आत्मा द्रव्य में जो अनंत पर पदार्थ रूप गे झलक रहे वो उनके कारण अनेक है। देखो वो उसमें अनंत गुण है, इनके कारण अनेक नहीं कह रहता था, जैसा देखा वो गेयों के अनेक आकार उसमें झलक रहे इसके कारण वो अनेक है। और ज्ञान का जो स्वभाव है कि उसमें गे झलके, ऐसा एक स्वभाव कि एक कभी झलके और कभी नहीं झलके, ایسا سواب نہیں ہے. جھلکیں تو جھلکیں ہی جھلکیں, ایسا ایک جو سواب ہے کہ اس کی اپیکشا ایک اور انیک گھٹت کرتے ہیں. اس لیے جب وہ اتنی سنتے سنتے آیا کہ یہ برابر گئے 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 کیا کہہ رہے ہیں انت پدارتھ کہاں کرنا, یہ ایک انیک کا سیدھا ارتھ نکال ہونا ہے کون سا, کہ گن انیک ہیں اس لیے انیک ہے اور آتما ایک ہے اس لیے ایک ہے, سیدھا سچا تو نیا ہے. اب اس کو ایک دم زبردستی کا اس کو کنفیوز کیوں کر دیا سب. دیکھو کرشن کو پھر پڑھتا ہوں, ہم نے تو ایسا سنا تھا کہ گیان مانے آتم وستو درب کی اپیکشا ایک ہے اور گنوں کی اپیکشا یا پریاؤں کی اپیکشا انیک ہے, پر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ گیاکار ہونے سے گیان انیک ہے. وہ ایک ہی گیان کو درسن سکھ بیر ان گنوں کو پکڑ نہیں رہے, اسی ایک گیان میں ایک پنا اور انیک پنا گیہوں کی اپیکشا سے گھٹت کر رہے ہیں. کلمہ ہے نا. اتر, آپ نے ٹھیک ہی سنا تھا کیونکہ جناگم میں درب کی اپیکشا ایک اور پریائے کی اپیکشا انیک ایسا بھی کتھن آتا ہے. وہ جو بات کہی ہے وہ کوئی جھوٹی نہیں ہے, اسی جناگم میں دوسری جگہ ویسا ہی کتھن آتا ہے, یہاں نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے یہاں, کیونکہ یہاں پر گیان اور گیہوں میں ایکتو بدھی کر کے اس نے مہان متھاتو کا پوشن کیا ہے, تو ہمیں گیان اور گے میں سے بھید وگیان کرانا ہے. کیا ہم بار بار پرکار سے گیان اور گیہوں سے کا بھید وگیان ہی نکالیں گے اس میں سے, یہاں اپیکشا یہ ہے نا. تتھاپی یہاں یہ اپیکشا ہی مکھ ہے کہ گیان میں انیک گیہوں کے جو انیک آکار جھلکتے ہیں ان کے کارن گیان کو گیاکار یا انیک آکار کہا جاتا ہے. اب دیکھو یہ کوئی بہت بڑا پرشن ہو کر دیا ہو ایسی تو بات ہے نہیں, کیونکہ اپن برابر ایسا سنتے ہیں نا اپیکشا سے اور وہ جنمانی میں پڑھتے آئے ہیں اور بات بھی سچی ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں ہمیں یہ پرشن کیوں کھڑا نہیں ہو رہا. چار دن سے کہ چھ دن سے اتنی گھٹائی ہو رہی ہے, ایک آکار انیک آکار ایک آکار انیک آکار, تو ہم کہیں بھائی گیان انیک کا مطلب آتما انیک آکار ہے, اس کا تو ارتھ یہ ہے کہ اس میں انت گن ہیں انت پریائے ہیں, اس کی اپیکشا وہ اندر اپنے سے اندر ہی اندر ایک انیک ہو گیا نا, پر گیہوں کی لانے کی کیا ضرورت تھی اس میں. تو وہ کہتے نہیں, یہاں ایسا ہونے پر بھی انیک گیہوں کو جاننے والا گیان گیاناکار ہی رہتا ہے, ایکاکار ہی رہتا ہے, بے آکار گیان کی ہی رچنا ہے, ان میں گیان ہی ویاپت ہے, گیہوں کا اس میں کچھ بھی نہیں آیا ہے, گے تو مات جاننے میں آئے ہیں. اب یہ اتر کیا دے رہے ہیں معلوم, کہ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ درپن کا ادھارن کئی دفعہ میں نے دیا ہے کہ درپن میں مور سامنے جھلک رہا ہے تو میوراکار بولتے ہیں, تو بالکل وہ جو جھلک رہا ہے وہ مور بالکل ویسا ہی آکار کا ہے نا جیسا آکار کا سامنے یہاں مور ہے, دونوں مور ہمیں دکھ رہے, یہاں بھی ایکچوئل مور دکھ رہا ہے وہاں درپن میں جھلکتا ہوا مور بھی دکھ رہا ہے, تو بالکل مور جیسا ہی آکار ہے نا, تو اس کو ہم میوراکار کہیں تو کیا غلطی ہے. بولے ایک جو یہ اپیکشا ہے کہ بالکل میور جیسا ہی آکار ہے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں سچائی نہیں ہے. کہ سچائی کیوں نہیں ہے, کیوں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو درپن کے بھیتر میور ہے اس میں جو مٹیریل لگا ہے وہ درپن کے ہے, درپن کا لگا ہے, وہ درپن کی پریائے ہے, اس میں مور کا رنج ماتر بھی کچھ نہیں لگا ہے. کتنا بڑا ستیہ ہے, تو اس کو آپ درپناکار کیوں نہیں کہتے, اسے میوراکار کیوں کہتے. تو ایک ہی چیز کو جنمانی میں بھی دو طرح پرستت کرنے کی پدھتی ہے کہ جس ویکتی جیسا آکار دکھے اسے اس کا آکار بھی کہتے ہیں اور جس میں دکھے اسے اس کا بھی آکار کہتے ہیں. पर दोनों के बहुत मजबूत आधार हैं। जो अपेक्षा है वो कोई कमजोर अपेक्षा नहीं है। हमने बराबर दोनों को देखा। पहले कभी तुमने देखा होगा कि जहां बच्चों की कहानियों की किताबें आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं ना मासिक, तो उसमें दो चित्र बना के देते हैं और फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल एक से बनाते हैं कि इनमें 10 फर्क निकालो, इस चित्र में वो इस चित्र में क्या अंतर है, तो उसे ढूंढो। और अच्छे अच्छे लोग नहीं ढूंढ पाते उसे। और फिर जब वो जिसने वो बनाया है ना, वो बताता है कि देखो इसका जो ये कान है ना बड़ा है और उस चित्र दूसरे चित्र में ये कान छोटा है, चित्र दोनों बराबर हैं क्या, यानी जितने इतने आकार का वो चित्र बनाया तो उसने आकार क्या इतने आकार का बनाया, तो एक में बना दिया इतना, एक में बना दिया इतना, अपन दोनों तरफ कान देख लेते हैं बस, उन्हें नापते तो नहीं है ना। ऐसी ऐसी वो 10 भूले निकालते हैं और जब वो निकाल के बता देते हैं तो हमारे ध्यान ही गए तो अंतर, फिर द्वारा देखो तो भी अंतर दिखाई दे जाता है। ऐसा फिर दोनों एक कैसे है, फिर दोनों चित्र तो अलग थे, लेकिन जो अंतर था वो इतना बारीक था जो हमारी समझ में नहीं आता था। और जो मिलावट है दोनों एक से दिखाई देते हैं वो इतनी ज्यादा है कि नहीं आते। अब ये तो चित्रों की बात है, अपन नहीं देखते हैं कि अपन दो भाइयों हैं और वे कभी अलग अलग मिलते हैं तो वो उन्होंने एक को दूसरा समझ लेते हैं। कभी बड़े दादा प्रश्न करने गए और फिर हम गए 2-3 साल बाद, तब कहते मैंने साहब आपका 3 साल पहले प्रवचन सुना था, कहा कि यही सुना था फिरोजाबाद में, यही सुना था, मैं तो आया ही नहीं, हमने तो सुना, कैसी बात करते हो आप। अब वो दोनों में अंतर नहीं है, कद में अंतर है, शरीर के आकार प्रकार में अंतर है, बदन में अंतर है, कलर में अंतर है ना, कितने अंतर है नहीं दिखाई देते। अब फिर उसी को दिखाओ तो यार हमें तो है, वो खुद ही स्वीकार कर देता है, होता क्या नहीं होता। और लेकिन मैं समझ ये देखा था दोनों की सफेद टोपी थी, दोनों की एक ही टोपी थी, लेकिन टोपियां मिलाओ तो बेबी दो एक छोटी बड़ी निकलेगी, उनकी ये दीवार में भी छोटा बड़ापन निकलेगा, उसमें भी अंतर होगा, लेकिन वो देखते ही नहीं। उसको क्यों झंझट में पड़ना, उन्हें 3 साल पहले सुना था बेच दो कर रहे थे, उनका आदमी भी सुन लिया, अरे प्रचंड में भी बहुत अंतर है। किसको याद है मूर्ख को 3 साल पहले क्या बोला था, किसने क्या बोला था है? जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा ना तो एक वाक्य सुन के बता देगा कि ये बड़े दादा का वाक्य है कि छोटे दादा का वाक्य, बता देता नहीं बता देता। उसमें लिखा है कि वे पंक्तियां चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, हम मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद की हूं, कोई किसी के साहित्य की चोरी नहीं कर सकता। यदि वो नाम दे के, आजकल तो पद्धति है नाम दे के दे दो, यदि वो नाम दे के नहीं भी दे रहे तो हम पहचान लेते हैं कि ये इसकी लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं से पूरा का पूरा पैरा उठाया है, मालूम पड़ जाता ना। जिसने प्रेमचंद की पंक्तियां चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं कि मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद, इतना अंतर होता है। तो अब वो अंतर है और अंतर नहीं है, ये दोनों है और नहीं है उस वस्तु में पड़े, माने दोनों में से एक भी गलत नहीं है, अंतर है भी गलत नहीं है और अंतर नहीं है भी गलत नहीं है। अब तेरी दृष्टि में नहीं आया तो इसने अंतर है का एकांत पकड़ लिया, तो एक में अंतर नहीं है, अरे तुम्हें क्या पता, उसमें तो बहुत फर्क है, एकदम जमीन आसमान का फर्क है। लोग ऐसे जमीन कौन है, आसमान कौन है, दिन में रात हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अब देखिए इसमें कितना स्पष्ट आपको समझ में आ गया ना कौन अंतर है। वो क्या समझता था, एक अनेक का अर्थ है, बोलो गुण है वे अनेक हैं और द्रव्य है वो एक है। और यहां क्या निकला कि उस द्रव्य में गे झलके बे अनेक हैं, तो गे तो परद्रव्य है बे। अब जो अपने द्रव्य में आते ही नहीं रहे, अत्यंत भारी की वज्र की दीवार पड़ी है, तो वो उनकी वजह से अनेक कहा था। तो ये अनेक कितना फीका है और एक कितना सही है, हाँ नहीं ना। लेकिन ये उसमें झलके हैं ज्ञान दर्पण में, जैसे ज्ञान में ये झलके, ये उतना ही बड़ा सत्य है। क्या ये झूठ नहीं है? वे आप मैं नहीं हूं, ये महाझूठ है उन्हें मैं मानना। लेकिन वे झलके ही नहीं ज्ञान में, ये मानना उससे भी महाझूठ है। और इस अपेक्षा से भी एकाकार और अनेकाकार कहा जाता है। तो गे झलके हुए गेयों की अपेक्षा से अनेकाकार, और अपने स्वभाव भगत एकता के कारण एकाकार कहा जाता है। ऐसे एकांत को समझा, खंडन करके आचार्य देव अनेकांत का स्वरूप बताकर कहते अज्ञानियों के पशुओं की पशुता को मेट कर उन्हें ज्ञानी बनाते हैं।